तारापरी और अमन आदिवासी लोगों की मदद करके लौटे थे, किंतु माली काका के घर पर उनकी बहू ने तारापरी को खरी खोटी सुनाते हुए वहां से जाने को कहा, क्योंकि तारापरी पूरी रात घर नहीं आई थी। माली काका उसे ढूंढने निकले थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। माली काका की बहू इस सब का जिम्मेदार तारापरी को ही मान रही थी। तारापरी अब वहां नहीं रहना चाहती थी, वो जल्द से जल्द अमन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि अमन ही वो नेक दिल इंसान था जिसके लिए वो पृथ्वी पर आई थी। माली काका की बहू की वजह से तारापरी को वहां से निकलने का बहाना मिल गया था। तारापरी ने अपना बैग पैक किया और माली काका के पास गई और बोली, चलो काका, मुझे बाहर तक छोड़ दो। माली काका उदास हो गए और बोले, बेकी, कैसे तुम्हें विदा करूं, मैं तो खुद अब किसी और का मोहताज हूं। ऐसा कहकर माली काका रोने लगे। तारापरी हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपना हाथ माली काका के पैरों पर रख दिया। देखते ही देखते माली काका का दर्द और गम गायब हो गया। उनकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माली काका खुशी के मारे उछल पड़े और तारापरी का शुक्रिया अदा करने लगे। तारापरी ने कहा कि वो बहुत जल्द लौट कर आएगी और अपना सामान ले जाएगी। तारापरी के गहने, जेवर, कपड़े जो माली काका ने उसी बगीचे में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिए थे। माली काका ने कहा, बेटा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर माली काका ने तारापरी के सर पर हाथ फेर दिया और उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आए। माली काका के अपने पैरों पर चलते हुए देखकर उनका परिवार हैरान रह गया। उनका बेटा पूछने लगा, बाबूजी, आप कैसे चल पा रहे हैं? आपकी तो हड्डी टूट गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? माली काका बोले, बेटा, शायद ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे किसी का मोहताज बनाना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मुझे ठीक कर दिया। माली काका अपने घर के बाहर तक आए तब तारापरी ने उन्हें वापस जाकर आराम करने को कहा और बोली, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाइए। माली काका नम आंखों से तारापरी को विदा करके घर वापस आ गए। तारापरी अपना बैग लेकर मेन रोड पर पहुंच चुकी थी। उसने सोचा था कि आज की रात वो किसी होटल में बिता लेगी और फिर कल कुछ न कुछ करके अमन सिंह राठौर के साथ शिफ्ट होने के बारे में सोचेगी। अभी तारापरी कुछ ही दूर गई थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वो किसी और की नहीं बल्कि अमन सिंह राठौर की गाड़ी थी। तारा अमन को देखकर खुश हुई थी, लेकिन उसने अपनी खुशी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। अमन ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा, आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। तारापरी थोड़ी सी अक्कड़ के साथ बोली, नहीं शुक्रिया, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ लूंगी। तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है? मैंने बोला आओ और गाड़ी में बैठ जाओ। तारापरी मन ही मन सोचने लगी, बैठ जा तारा, कहीं इसके अंदर का जिन बाहर ना आ जाए। लेकिन उसने एक बार फिर मना कर दिया। इस बार अमन को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी से नीचे उतर गया और तारापरी का बैग उसके हाथ से छीनकर गाड़ी में डाल दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया। तारापरी मन ही मन मुस्कुरा उठी। अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तारापरी ने बोलना शुरू कर दिया, आखिर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक तो आपकी वजह से उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब आप जबरदस्ती मुझे कहीं लेकर जा रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो। श, एकदम चुप करके बैठो, मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ तुम्हें अभी पता चल जाएगा। करीब 40 मिनट तक कार चलाने के बाद अमन ने एक बेहद आलीशान बंगले के सामने गाड़ी रोकी। तारापरी वहां जो खूबसूरती देखती रह गई। अमन ने तारापरी से कहा, अब देख क्या रही हो, गाड़ी से नीचे उतरो। तारापरी ने थोड़ा रुका और फिर गाड़ी से नीचे उतर गई और जैसे ही उसने बंगले के बाहर कदम रखा, अचानक से एक आंधी सी आ गई और पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सा कंपन हो गया। तारापरी हैरान रह गई। वहीं अमन गौर से तारापरी को देखने लगा और सोचने लगा कि इस लड़की के आने से अचानक क्या हुआ, और अमन काफी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। वो जगह उसे परी लोक की याद दिला रही थी। तारापरी आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। अमन तारापरी को बड़े ध्यान से देखने लगा। अपनी ओर अमन को इस तरह से देखते देख तारापरी घबरा गई और बात पलटने के लिए तारापरी ने उल्टा अमन से कहा, आप मुझे किस भूत बंगले में ले आए हैं? कैसी अजीब सी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर और ये भूभंसा क्या आ रहा है? तारापरी की बात सुनकर अमन के मन में जो ख्याल आ रहे थे वे गायब हो चुके थे और वो सर झटक कर आगे बढ़ा और तारापरी से बोला, तुम क्या चुप नहीं रह सकती हो? कितना बोलती हो तुम? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें उन लोगों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे घर में रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। तब तारापरी बोल पड़ी, वॉट, आप मुझे यहाँ रहने के लिए ले आए हैं? लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यहाँ पर भी तो बातें बन सकती हैं और वैसे भी मैं एक अनाथ हूँ, मुझे तो इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोच लो, आपकी काफी इज्जत है, रुतबा है, कहीं लोग आप पर ना उंगली उठाने लगे कि एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। तारापरी ने इंसानी सारी बातें अमन से कह दी थी। अमन बड़े ध्यान से तारापरी की बात सुन रहा था। लोगों की बातें बनाने या किसी और चीज को लेकर अमन को भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तारापरी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। तब अमन ने कहा, ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ रहो, उसके बाद मैं दो दिनों में तुम्हारा कहीं और इंतजाम कर दूंगा। तारापरी हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी, बेवकूफ परी, क्या जरूरत थी इतना इमोशनली बोलने की? लो, ले लिया ना इसने सीरियस, अब ये कहीं और मुझे रखेगा। सारा प्लान अपनी बकबक से तूने खराब कर लिया। तारापरी मन ही मन खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, वेल अब जो हो गया सो हो गया, अब चल इसके साथ अंदर और फिर कल सोचना करना क्या है। तब अमन बोला, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, चलो अंदर। तारापरी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, लेकिन मेरा बैग। अमन बोला, उसे कोई नौकर ले आएगा, तुम चलो। ऐसा कहकर अमन आगे आगे चलने लगा और तारापरी अमन के पीछे पीछे चलने लगी। अमन खूबसूरत से गार्डन को पार करता हुआ अंदर चला गया। तारापरी का तन मन झूम उठा था वहां की खूबसूरती को देखकर। वो हैरानी से आगे बढ़ रही थी और जल्दी ही उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई। तारापरी दरवाजे पर ही रुककर पूरा बंगला देखने लगी। उस बंगले में केवल दो ही रंग थे, काला और सफेद। पूरा घर केवल दो रंग की चीजों से भरा पड़ा था। तारापरी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी और मन ही मन सोचने लगी, लगता है सभी जिन्नों का घर ऐसा ही होता होगा, काला और सफेद उनके फेवरेट रंग होंगे। मुझे तो ये बंगला कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। तारापरी को दरवाजे पर खड़े हुए काफी देर हो गई थी। अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, वो तो सीधा अपने कमरे में चला गया था। तारापरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। तभी एक बड़ी खूबसूरत महिला एक रेशमी साड़ी पहने हुए वहां आई। शक्ल सूरत और उसके चलने की बनावट और एटीट्यूड से वो वहां की महारानी लग रही थी। वो सीधा तारापरी के पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम रुकी क्यों गई। तारापरी हैरानी से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं। वो महिला बोली, घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो और आओ मेरे साथ। तारापरी बोली, लेकिन आप कौन है। उस महिला ने कहा, मेरा नाम करिश्मा राठौर है और मैं तुम्हारे बॉस अमन सिंह राठौर की माँ हूँ। क्या माँ। ये सुनते ही तारापरी को चक्कर आने लगे और बोली, रियली माँ, आप माँ हो अमन सर की।
करिश्मा मुस्कुराई, हाँ मैं माँ हूँ, लेकिन तुम बार बार क्यों पूछ रही हो। तब तारापरी ने कहा, मैं इसलिए पूछ रही थी मैडम, आप माँ कहीं से भी नहीं लगती हो, मुझे तो आप अमन सर की बड़ी बहन लगी, इसलिए मैंने पूछा। तारापरी की बात सुनकर करिश्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, सभी यही कहते हैं। और बोली, तुम चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ, तुम आराम कर लो, शाम को घर में फंक्शन भी है। तारापरी चौंक कर बोली, फंक्शन, कैसा फंक्शन। तब करिश्मा ने कहा, तुम्हें अमन ने बताया नहीं। तारापरी ने नामे सर हिला दिया। तब करिश्मा बोली, आज शाम को अमन सिंह राठौड़ की हल्दी का फंक्शन है।